मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 2 जुलाई 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। और दोस्तों, आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन युवा साथियों के नाम हैं अभिषेक राय, आपका गांव है महुआड़ी, जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, अंजनी कुमार औरंगाबाद बिहार से, शुभदीप सिन्हा, आपका गांव है पश्चिम बकुलदा, जिला पूर्वा मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल से, शिल्पी नई दिल्ली से, पितबासा सामंत राय, आपका गांव है बेटा गड़िया, जिला बालासोर उड़ीसा, कर्तव्य, आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, दीपक कुमार, आपका गांव है बेटिया, जिला पश्चिम चंपारण बिहार से, सौरभ सुमन, आपका गांव है तिलक मंजी, जिला भागलपुर बिहार से, और रविराज, आपका गांव है नानपुर, जिला बेगूसराय बिहार से। तो अभिषेक, अंजनी, शुभदीप, शिल्पी, पितबासा, कर्तव्य, दीपक, सौरभ और रवि, आप सभी नौ साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक छोटी सी सूचना है और सूचना यह है कि अगर आप लोग YouTube पर मुझे देख रहे होंगे, लगातार फॉलो करते रहते होंगे, तो ध्यान होगा आपको कि शनिवार को YouTube पर एक प्रोग्राम डाला गया है कि बेसिकली जो UPSC है, सिविल सर्वेंट आपको बनाना चाहता है और उसके लिए उसके अपने पैटर्न हैं। उसने पहले मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन निर्धारित कर रखी है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, एज भी आपकी 21 प्लस होनी चाहिए। इसके बाद फिर वो 3 स्टेजेस पर आपके एग्जामिनेशन लेता है, प्री मेंस और फिर इंटरव्यू भी लेता है, लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती। फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजता है और ट्रेनिंग के भी उनके अपने सिस्टम है। पहले वो आपको फाउंडेशन कोर्स कराएगा, फिर आपको जो सर्विस मिली है उस सर्विस की ट्रेनिंग कराएंगे, और उस सर्विस की ट्रेनिंग भी दो तरीके से होती है कि आपको एकेडमी में जैसे आपकी क्लासेज लगती हैं उस तरह की ट्रेनिंग होगी, और फिर आपकी फील्ड ट्रेनिंग भी होगी, तब जाकर के इनफैक्ट आप सिविल सर्वेंट बनते हैं। इन सबको लेकर के मैंने एनालाइज करने की कोशिश की है कि बेसिकली UPSC आप में क्या क्वालिटी देखना चाहता है, आप में क्या ढूंढता है। जब हम एग्जाम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में थोड़ी सी ये गलतफहमी हो जाती है कि वो सिर्फ हमारी पढ़ाई को देखना चाहता है, हमारे नॉलेज को देखना चाहता है कि हम कितना ज्यादा जानते हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नॉलेज है ये तो केवल एक माध्यम है जिसके जरिए वो कुछ और जानना चाहता है। तो क्या जानना चाहता है, इसके ऊपर एक प्रोग्राम YouTube में डाला गया है और मैं चाहूंगा कि आप सब मेरे जो प्रिय श्रोता हैं उस प्रोग्राम को जरूर देखें, उस प्रोग्राम को जरूर देखें। और केवल देख करके सुन करके वो भुला देने की बात नहीं है, बल्कि सही बात तो यह है कि उसको देखें, उसे समझने की कोशिश करें, और जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तो आपको कोशिश उसमें फिर यह भी करनी है कि आपके जो आंसर हो या जो आपकी तैयारी हो उन तैयारियों में वो सारे गुण आए जो UPSC आप में चाहता है। फिर आप पाएंगे कि आप किताबों की दुनिया से निकल करके थोड़ी सी एक व्यापक दुनिया में एंटर कर गए हैं और वही UPSC आपसे डिमांड भी करता है। तो मित्रों, मेरा एक विनम्र सजेशन है कि आप सब YouTube में उस प्रोग्राम को देखें। जहां तक दोस्तों मुख्य विषय का सवाल है, मंडे को अभी हम लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के ऊपर कुछ बातें कर रहे हैं, तो आज मैं आपसे प्री एग्जामिनेशन के बारे में, खासकर फोकस्ड तरीके से प्री एग्जामिनेशन के बारे में बात करूंगा। और इसके बारे में मैं बात करूंगा अनुमान लगाने की क्षमता, जिस पर पिछली बार मुझे ध्यान आ रहा, थोड़ी सी मैंने चर्चा की थी कि अनुमान लगाने की क्षमता बेसिकली क्या है। और जब आप YouTube चैनल में मेरा प्रोग्राम देखेंगे तो उसके माध्यम से भी आप इस तथ्य को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा और आज आपसे विस्तार के साथ बात करना चाहूंगा इस पर। दोस्तों, इससे पहले हम लोग न्यूज एनालिसिस को देख लेते हैं। सच पूछे तो कोई खास न्यूज आपको मालूम है कि डिस्कस करने के लिए मंडे को हम लोगों के पास नहीं होती है, लेकिन एक बात है और इसके माध्यम से भी मैं एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की भी बात करूंगा, जो मैंने अब अपने डेली ऑडियो लेक्चर में थोड़ा सा चेंज कर दिया है उसके पैटर्न को, और मुझे खुशी है कि बहुत से स्टूडेंट उस चेंज किए हुए पैटर्न को पकड़ पा रहे हैं और उसे सराह भी रहे हैं। जैसे देखिए कि जीएसटी पर बात हो रही है, 1 जुलाई को जीएसटी लागू किया गया था और कल उसका एक साल पूरा हो गया है और कल वो जीएसटी दिवस भी मनाया गया। बहुत ही क्रांतिकारी कदम था, नो डाउट कि टैक्स के फील्ड में ये एक क्रांतिकारी कदम था। और आपने देखा है कि किस तरीके से संसद में आधी रात को, ये जैसे कि हमें आजादी आधी रात को मिली थी, उस तरीके से उस पैटर्न पर जीएसटी लागू की गई थी। जब जीएसटी लागू कर दिया गया तो आप देखते हैं पाते हैं कि कितने इसको संकट से गुजरना पड़ा है, बहुत संकट। वेबसाइट की प्रॉब्लम, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम, सिस्टम, मतलब ढेर सारे संकट आए। और सच पूछे तो इस जीएसटी ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया और संकट में डाल दिया। ऐसा लगने लगा कि ये क्या लागू हो गया है। छोटे दुकानदार से लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियां तक न तो समझ पा रही हैं न कर पा रही हैं, बहुत ज्यादा परेशान थीं। डेफिनेटली ये कहा जाता है कि जितनी परफेक्ट तैयारी के साथ जीएसटी को लागू किया जाना चाहिए था, उस तैयारी के साथ लागू नहीं किया गया। वो सरकार के पार्ट पर एक फेलियर रहा, जिसे आप प्रबंधन की असफलता कह सकते हैं। लेकिन चलिए, फिर धीरे धीरे चीजें बेहतर होती चली गई और अब चूंकि साल भर का वक्त निकल चुका है तो चीजें धीरे धीरे स्टेबलाइज हो गई हैं और इसके कुछ जो सकारात्मक परिणाम आने चाहिए थे वो आने शुरू भी हो गए हैं। इसके बारे में आज अखबारों में एडिटोरियल कमेंट्स भी हैं, कुछ आर्टिकल्स भी हैं, ये आपको पढ़ने को मिलेंगे। मेरा यहां सजेशन है कि अब देखें कि ये जीएसटी का मामला है तो अब आपके एग्जामिनेशन के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात है, देखिए कि अगर आप अभी जो मेंस के एग्जाम होने हैं सितंबर लास्ट में, जो मेंस के एग्जाम शुरू होने हैं, अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो जीएसटी का यह टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है। हो सकता है कि जीएसटी के बारे में कोई समीक्षात्मक टिप्पणी लिखने को आ जाए मेंस में। लेकिन अगर आप इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, मतलब मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तब फिर आपके लिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पर आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सामान्य तौर पर तो आपको चीजें पढ़नी ही चाहिए, लेकिन विशेष तौर पर नहीं। और मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि जो सिविल सर्विस की तैयारी होती है वो एक वेरी इंपॉर्टेंट, देन इंपॉर्टेंट और फिर लेस इंपॉर्टेंट या सामान्य, इन तीन लेवल पर हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो आपको समझना ये होगा कि आपके लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सभी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। मित्रों, यही महत्वपूर्ण खबर थी। आइए अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। मैंने इससे पहले आपसे कहा कि अनुमान लगाने की क्षमता, मित्रों, जो नॉलेज है इनफैक्ट, जिसे हम वाकई में सच्चा ज्ञान कहते हैं, वो सच्चा ज्ञान, अनुमान लगाने की क्षमता, नया कुछ सोच पाने की क्षमता ही है। दोनों में फर्क यह है कि नया हम सोच जब पाते हैं तो वो स्थिति होती है जब कुछ भी हमारे पास नहीं है और हम कुछ नया सोच रहे हैं। सिविल सर्विस मेंस के आप क्वेश्चंस देखिए, आपका सिलेबस पूरी तरह से तैयार है। मजेदार बात है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है वो टॉपिक भी आपका पूरी तरह से तैयार है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर लिखते नहीं बन रहा है। क्या लिखें, मतलब आप या तो भ्रम में पड़ गए हैं या दिमाग अड़ गया है, कुछ शुरुआत ही नहीं कर पा रहा है, या शुरुआत कर रहा है तो उन चीजों को उस तरीके से नहीं लिख पा रहा है जिस तरीके से लिखा जाना चाहिए, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि अभी दिमाग में वह क्षमता नहीं आई है कि वह नई चीज क्रिएट कर सके। पहली बात ये मेंस के लिए है। प्री में आपको नई चीज क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहां आपको अनुमान से सही तक पहुंचना पड़ता है। ये दोनों में फर्क है, जो अनुमान लगाने की क्षमता और जो नया सोचने की जो क्षमता है उसका अंतर है। यहां आपके सामने चीजें हैं, चीजें दी गई हैं, और बड़ी बात यह है कि जो चीजें दी गई हैं वो आपने प्रत्यक्ष रूप से भी पढ़ी हुई हो सकती हैं और नहीं भी पढ़ी हुई हो सकती हैं, लेकिन जो टॉपिक है वो ऐसा नहीं है जो बिल्कुल हवा में कहीं से भी पूछ दिया गया है। ये बात अलग है कि किसी वजह से अगर वो सिलेबस में नहीं था तो हमने नहीं पढ़ा, या सिलेबस में था भी तो हम पकड़ नहीं पाए कि ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, था तो हमने उसे इग्नोर कर दिया। उसका कारण चाहे कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है कारण, लेकिन अगर प्रश्न पूछ लिया गया है तो हम उसे चैलेंज नहीं कर सकते। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जब भी किसी ऐसे टॉपिक पर प्रश्न पूछा जाता है, स्पेशली मैं प्री की बात कर रहा हूं, तो जो एग्जामिनर है या जो पेपर सेटर है वो ये मान करके चलता है कि स्टूडेंट ने इसे पढ़ा नहीं है, यह उसकी तैयारी का हिस्सा नहीं रहा है। फिर आप प्रश्न कर सकते हैं कि फिर उसने दिया क्यों, क्या उसकी हमारे साथ दुश्मनी है? नहीं मित्रों, जो आपके पेपर सेटर हैं वो आपके दुश्मन नहीं हैं, वो आपके शुभचिंतक हैं। लेकिन मुश्किल उनके साथ ये है कि वो देश के भी उतने ही शुभचिंतक हैं, उन्हें देश पहले दिखाई देता है, वो बेस्ट का चयन करना चाहते हैं और बेस्ट का चयन करके वो देश को उन युवाओं को सौंपना चाहते हैं कि लीजिए अब आप इन्हें तैयार कीजिए, सिविल सर्वेंट बनाइए और अपने समाज को राष्ट्र को उन्नत के रास्ते पर आगे ले जाइए, खुशहाल करिए, दुश्मन नहीं है। तो बेस्ट के चयन के लिए जब ये कोशिश करते हैं तो फिर वो अनुमान लगाने की आपकी क्षमता को जजमेंट करते हैं कि ठीक है आपने इसे पढ़ा नहीं है और हम आपको प्रश्न दे रहे हैं और प्रश्न इस तरीके से दे रहे हैं कि आप बकायदे उस प्रश्न का फ्रेमिंग जो करेंगे, यानी कि उस प्रश्न को जिस तरीके से गढ़ेंगे और साथ ही जो उसके विकल्प देंगे वो इस तरीके से देंगे कि अगर आपकी वो कैपेसिटी है जिसको मैं कैपेसिटी बिल्डिंग कहता हूं, यानी कि पढ़ा आपने कुछ और है लेकिन उस और पढ़ने ने आपके अंदर ये क्षमता पैदा कर दी है कि आप उसका अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो यहां आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे, सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सिविल सर्विस के प्री में जितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आप सीधे सीधे उत्तर दे लेंगे, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आप उनके उत्तर दे लेंगे और अगर आप दे लेंगे तो ज्यादातर लोग उनके उत्तर दे लेंगे, तो जिसके उत्तर हर कोई दे रहा है वहां समानता हो गई, वहां आपने कुछ भी हासिल नहीं किया है। याद रखिए, अगर उनके आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तब आपने लूज किया है, अगर सबके आपने उत्तर दे दिए तो कुछ भी आपने हासिल नहीं किया है। तो हासिल करने की स्थिति आती कहां से है? हासिल करने की स्थिति आती है मित्रों ऐसे ही प्रश्नों में जिन्हें मैं कह रहा हूं कि अनुमान लगाने की क्षमता, यानी कि अब कौन विद्यार्थी कितने ज्यादा सही अनुमान लगाकर सही उत्तर तक पहुंच पाता है, और जो जितने ज्यादा सही अनुमान लगा लेता है स्वाभाविक है कि उसका जो माइंड है उतना अधिक उर्वरक है, उतना अधिक बेहतर है, और यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा मुझे कहने की अगर आप इजाजत दें तो वह उतना अधिक विजनरी है, मतलब वो चीजों का भविष्य का अनुमान लगा सकता है कि अगर मैं ऐसा ऐसा करता हूं तो आगे ये हो सकता है। और प्रशासन तो इसकी एक कला है कि आप जब निर्णय लेते हैं तो आप निर्णय लेते समय आप ये मान करके चलते हैं कि मेरे निर्णय के ये परिणाम होंगे, और वो परिणाम जितने सही होंगे वही प्रूफ करेगा कि आपके निर्णय उतने सही थे और समाज को उसी अनुपात में उसका लाभ मिलेगा। तो मित्रों, जब भी आप पढ़ाई करें याद रखिए, टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिलेबस किताबें पढ़ रहे हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि उस पढ़ाई के बाद आप में अनुमान लगाने की कितनी क्षमता विकसित हो पा रही है। तुरंत नहीं होगी, ये लंबी प्रक्रिया है, इसमें लंबा वक्त लगता है। जब ढेर सारी चीजें आप पढ़ लेंगे तब कुल मिलाकर के अनुमान लगाने की क्षमता का प्रदर्शन आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक हिस्ट्री पढ़ ली तो हिस्ट्री का अनुमान लग गया। जो अनुमान लगाने की क्षमता होती है ये इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब सारे विषयों को पढ़ने के बाद कहीं हमारे अंदर ये क्षमता पैदा होती है, इसलिए शुरुआत में ही अपनी इस क्षमता का आप मूल्यांकन करने की व्यर्थ कोशिश न करें। तो दोस्तों, आज के डेली ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से तीन दोस्तों के नाम हैं जैसाराम चोपड़ा, अवनीश प्रताप सिंह गोरखपुर उत्तर प्रदेश से और क्षमा अलवी। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।